कमरा अब बिल्कुल शांत था, सिर्फ दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। श्यामली धीरे धीरे उठी, पैर जमीन पर रखे और सामने की मेज से कपड़ा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर पूछने लगी। उसके हाथ चल रहे थे पर दिमाग कहीं और था। वो खुद से बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है, मेरे और विश्वनाथ जी के बीच तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सांसें भारी हो गईं। तो फिर ये लक्षण क्यों है, उल्टी, कमजोरी, चक्कर, क्या सच में? वो सोचते सोचते आईने में खुद को देखने लगी। चेहरा फीका पड़ गया था। वो खुद से फुसफुसाई, नहीं, ये कोई गलती है, कोई भ्रम। कमरे में हल्की हवा बह रही थी पर उसके अंदर घुटन थी। वो कपड़ा रखकर अलमारी के पास चली गई, फिर वापस आई, जैसे कुछ भूल गई हो, जैसे खुद से भागना चाहती हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहूजी, अंदर आऊं? आवाज मधु की थी। श्यामली ने धीमी आवाज में कहा, हाँ आ जाओ मधु। मधु मुस्कुराती हुई अंदर आई, हाथ में नींबू पानी का गिलास था। लीजिए, मालकिन ने कहा है आप कुछ काम नहीं करेंगी अब, बस आराम कीजिए। श्यामली चौंकी, क्या मतलब, मैं क्यों नहीं करूं काम? मधु ने हंसते हुए कहा, अरे बहूजी, अब आप मां बनने वाली हैं, आपसे अब कोई बर्तन मंजन नहीं करवाएगा, सब संभाल लेंगे। श्यामली ने कपड़े तह करते हुए कहा, मधु ऐसा कुछ अभी पक्का नहीं है, डॉक्टर ने कहा है संभावना है, पक्का नहीं। मधु ने सिर हिलाया, अरे डॉक्टर तो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, पर जो मैंने देखा वो तो साफ है बहूजी, चेहरा पीला, कमजोरी, उल्टी, सब तो वही लक्षण है। वो मुस्कराई, मालकिन भी बहुत खुश है, बस ठाकुर साहब को खबर मिल जाए फिर तो सब तरफ जश्न ही जश्न होगा। श्यामली का चेहरा एकदम उतर गया, उसके होठों पर शब्द अटक गए। धीरे से बोली, विश्वनाथ जी? मधु ने उत्साह से कहा, हाँ जब ठाकुर साहब को ये खबर मिलेगी तो देखना कैसे फूले नहीं समाएंगे, कहते हैं ना उनके तो घर में खुशियां लौट आएंगी। श्यामली ने धीरे धीरे सिर झुका लिया, उसकी आंखें नम हो गई। मधु, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा सच हुआ तो क्या लोग सवाल नहीं करेंगे इतने कम समय में? मधु ने बेपरवाही से कहा, अरे बहू जी, लोग तो हर बात पर बोलते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, भगवान की मर्जी है, सब ठीक होगा। श्यामली ने हल्की मुस्कान की कोशिश की पर वो पूरी नहीं हो पाई। वो बस बोली, तुम जाओ मधु, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। मधु ने सिर हिलाया, ठीक है बहू जी, पर आप परेशान मत होइए, मैं नीचे सबको बोल दूंगी कि आप आराम कर रही हैं। वो जैसे आई थी वैसे ही धीरे से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। श्यामली पलंग के पास आई और बैठ गई, उसकी उंगलियां अपने ही पेट पर टिकी। वो उस छोटे से स्पर्श से जैसे कुछ महसूस करना चाह रही थी, पर कुछ नहीं था, बस उलझन। अगर ये सच हुआ, उसने खुद से कहा, तो फिर विश्वनाथ जी क्या सोचेंगे, वो तो हमेशा दूर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में, कभी मुझे पत्नी के रूप में देखा ही नहीं। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई, वो रात जब शादी के बाद पहली बार वो कमरे में आई थी। विश्वनाथ कुछ बोले ही नहीं थे, सिर्फ एक आराम करो कहकर बालकनी में चले गए थे। तब से अब तक वही दूरी, वही ठंडापन। श्यामली की आंखों से आंसू बह निकले, मैंने तो कभी उनकी मर्यादा लांघी भी नहीं। तो फिर वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आंगन में नौकरानियां अब भी हंस हंस कर बातें कर रही थीं। बहूजी मां बनने वाली हैं, मालकिन पूजा का प्रसाद चढ़ा रही हैं। वो सुनती रही पर हर हंसी उसे चुभ रही थी। सबको तो बस खबर चाहिए, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। वो धीरे से खिड़की का पर्दा खींचकर बंद कर देती है, कमरा आधा अंधेरा हो जाता है। वो बिस्तर पर लौटती है, तकिए के पास बैठ जाती है। उसका मन अब भय से भरा था। अगर ये खबर विश्वनाथ जी तक पहुंची, वो सोचते हुए कांप उठी, वो मुझ पर शक करेंगे, कहेंगे मैंने किसी, वो वाकई पूरा नहीं कर पाई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने दोनों हथेलियां जोड़ ली और फुसफुसाई, हे भगवान, जो सच है वही दिखा देना, छूत के साए में मैं नहीं जी पाऊंगी। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। श्यामली, इस बार आवाज धीमी थी, शकुंतला की। श्यामली एकदम चौकन्नी हो गई, आइए। शकुंतला कमरे में आई, हाथ में कोई मिठाई का डिब्बा था। माँ ने कहा है तुम्हें कुछ मीठा खिलाऊं। सुना है गर्भवती औरत को मीठा खिलाना शुभ होता है। श्यामली ने सिर हिलाया, पर अभी तो पक्का भी नहीं। शकुंतला मुस्कुराई, पर वो मुस्कान कोमल नहीं थी। हाँ, पर हवेली में सब तो यकीन कर चुके हैं। कभी कभी बात सच भी नहीं होती, पर अगर सब मान ले तो सच जैसी लगने लगती है ना। श्यामली ने उसकी आंखों में देखा, वो मुस्कान के पीछे की चुभन समझ गई थी। शकुंतला मिठाई की प्लेट टेबल पर रखकर धीरे से बोली, वैसे जल्दी तो हुई ना, शादी को कुछ महीने भी पूरे नहीं हुए, और वो बात अधूरी छोड़कर मीठा मुंह में डालती है। श्यामली ने उसकी ओर देखा, दीदी शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। शकुंतला ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं बहू, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, बस सोच रही थी कि किस्मत कुछ लोगों पर जल्दी मेहरबान हो जाती है। वो मुड़ने लगी, फिर रुकी, वैसे विश्वनाथ को खबर दे दी है मैंने। श्यामली का दिल जैसे थम गया। क्या? हाँ, शकुंतला बोली, माँ ने कहा था मैं ही बताऊं, वो तो अब तक पहुंच चुके होंगे। श्यामली के होंठ कांपे, पर ये तो अभी कंफर्म भी नहीं हुआ। शकुंतला ने कंधे उचका दिए, हवेली में खबर पहुंचने में वक्त नहीं लगता श्यामली, अब बस आप तैयार रहिए, विश्वनाथ शाम तक लौटेंगे। वो मुस्कुराई, और हाँ, अब कोई गलती मत करना, माँ बनने वाली औरतों को तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो चली गई, कमरे में फिर वही ठंडा सन्नाटा छोड़कर। श्यामली कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही, उसके अंदर जैसे हजारों आवाजें एक साथ उठ रही थी। विश्वनाथ जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या मुझ पर यकीन करेंगे, या वो बिस्तर पर गिर पड़ी, तकिया आंसुओं से भीग गया। नीचे से मधु की हंसी अब भी गूंज रही थी, अब तो ठाकुर साहब के कदमों की आहट सुननी बाकी है। पर ऊपर के कमरे में एक औरत बैठी थी, टूटी हुई, उलझी हुई, जिसके लिए ये खुशखबरी किसी तूफान से कम नहीं थी। श्यामली ने धीरे धीरे आंखें बंद की, दिल से एक ही आवाज निकली, अगर ये सच नहीं है तो भगवान ये झूठ जल्दी उजागर कर देना, और अगर सच है तो मुझे हिम्मत दे, क्योंकि इस सच से सबसे ज्यादा चोट विश्वनाथ को लगेगी। वो खिड़की की ओर देखने लगी, बाहर धूप अब ढल रही थी। आंगन में मधु और बाकी नौकरानियां सजावट करने में लग गई थी। रत्ना देवी पूजा के लिए फूल मंगवा रही थी, और श्यामली अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मन में एक डर, एक सवाल और एक ऐसा राज जिसने हवेली की नींव तक हिला देने की ताकत रखी थी।